के पत्री का आठवां अध्याय का छठवां पद आप इसे कोई एक जन हिंदी में पढ़ेंगे प्लीज।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर से आत्मा के द्वारा करते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Only those who are led by the Spirit of God are the sons of God। हमने इस बारे में कुछ चर्चा की थी ना पिछले समय और किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंचे थे शायद।
आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि मैं कई सालों से इसका करता रहा हूँ और मेरे नोट
देख के मुझे बताना होगा क्योंकि बहुत सारे बातें हैं सब कुछ याद नहीं रहती इसीलिए मैं कोशिश करूंगा नोट देख के बताने की। वैसे मुझे देख के पढ़ने की आदत थोड़ी कम हो गई। तो एक बार हम प्रार्थना करें परमेश्वर से मदद मांगे इन बातों की
इस बात का अध्ययन करने के लिए। परमेश्वर हम चाहते पवित्र आत्मा जो तुमने हमें दिया है उस पवित्र आत्मा की सफाई रखने और हम जो जो समझने जा रहे हो जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो हम अच्छी तरह समझ सके प्रभु।
और सिर्फ समझना ही काफी नहीं प्रभु, हमें अनुग्रह चाहिए कि हम उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सके उसमें हम चल सके। यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं। तो इस पैसेज के अनुसार इस वृत्त के अनुसार सिर्फ वही लोग परमेश्वर के पुत्र की गिनती में आते हैं जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, यानी जो आत्मा को उन्हें चलाने की इजाजत नहीं देते वो परमेश्वर के पुत्र नहीं है। और हमें पवित्र शास्त्र में से ये देखना है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब क्या है और परमेश्वर के पुत्र जो हम देख रहे हैं इसमें इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमने यीशु मसीह के उस काम पर विश्वास किया था, यानी हमने जब ये माना था कि हम पापी थे और यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया और क्रूस पर अपना जीवन दिया अपना लहू बहाया, जब हमने उस बात को मान लिया तब हम परमेश्वर की संतान होगी। योहन्ना का सुसमाचार के 1:12 बाद में भी आप बाद में देख सकते हैं उसमें लिखा है कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन ये तो परमेश्वर के पुत्र होने की बात है। तो हम इन दोनों बातों पर अध्ययन करेंगे। हमने ये भी देखा था पिछले बार कि इस 14वां पद को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे से पढ़ना होगा और 13वें पद में लिखा है कि यदि हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो क्या होगा अमर जाएंगे और लेकिन यदि हम आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को मार डालेंगे तो हम जीवित रहेंगे। और मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये है कि शरीर के द्वारा नहीं चलाए या शरीर के द्वारा चलने का विपरीत है आत्मा के द्वारा चलाए चलना। और मैंने ये भी बताया था कि बाइबल में जब शरीर शब्द इस्तेमाल होता है तो आपको ध्यान से देखना होगा वो अक्सर इस शरीर के लिए नहीं इस मांस के लिए नहीं हमारे पुराने सोच विचारों के लिए है। अब ये शब्द क्यों है उसका अध्ययन बहुत लंबा होगा क्योंकि मुझे फिर पूरी एटिमोलॉजी आपको दिखाना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे ये शब्द आया। इसलिए फिलहाल इतना काफी है कि बाइबल में अधिकतर अंग्रेजी में फ्लैश या कार्नल माइंड या फिर हिंदी में शरीर शब्द इस्तेमाल होता है इसका मतलब है पुराना या पुराना सोच। तो हम उस पुराने सोच विचार में जो यीशु मसीह में आने से पहले थे उसमें चलेंगे तो हम आत्मा के द्वारा नहीं चलेंगे। इस आठवां अध्याय को समझने के लिए आपको पूरा
थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा आपको पहला अध्याय से अगर आप पहला अध्याय और फिर उसका दूसरा अध्याय फिर उसके बाद तीसरा अध्याय फिर
चौथा पांचवा छठा और सातवां और आठवां अध्याय एक साथ पढ़ेंगे यानी एक ही बार तब आपको ये 14 पद अच्छी तरह समझ आएगा। क्यों? क्योंकि लिखते समय पौलुस ने चैप्टर्स नहीं डाले थे इसलिए एक ही विचार कर रहा। इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बात मैं बता रहा हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए और फिर मेन पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए इसके बाद खुद अध्ययन कीजिए। यानी आप आज नहीं हो सकेगा लेकिन कल परसों कभी जब भी आपको समय मिले बाइबल निकालना रोमियो की पत्री निकालना पहला पद अध्याय से शुरू करना और आठवां अध्याय का आखिरी तक पढ़ना एक साथ एक ही बारी में थोड़ा समय लगेगा कोई बात नहीं। तो हिम्मत करके बैठ जाना। तो जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, काम से आके थके हुए मत करना, ज्यादा खाना वाना खाने के बाद मत करना, नींद आएगी। इसलिए बिल्कुल फ्रेश हो, बैठना और देखना। और फिर ट्रेनों का कामों से मैंने आपको सिखाया था 17वां अध्याय का 11वां पद, आप स्वयं चेक करना कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। पवित्र शास्त्र में खुद आप चेक करेंगे कि जो बातें मैं बता रहा हूँ वो ऐसा है कि नहीं। रोमियो की पत्री में शुरू से लेकर आखिर तक मेन दो बातें बताई जाती है कि उद्धार जो है अनुग्रह से और विश्वास के द्वारा मिलता है। तो रोमियो पत्री पहला अध्याय से लेकर कितना अध्याय है इसमें? इतना नहीं है, 16 अध्याय। इसमें मेन चर्चा का विषय खास करके 10वां अध्याय तक दो मेन बातें हमें बताई जाती है कि हमें जो मुक्ति मिलती है या मुक्ति हमें जो मिली है वो परमेश्वर का अनुग्रह और वो विश्वास से मिलता है। और एक और बात इसमें बताई जाती है कि ये हमारे कामों के कारण नहीं है, यानी हम किसी भी अच्छे काम करके परमेश्वर का उस अनुग्रह को हासिल नहीं कर सकते और मुक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। दरअसल ये है, उदाहरण के लिए पहला अध्याय में पौलुस बताता है, यानी पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा हमें बताता है कि उस अनुग्रह के बारे में जो यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को मिलता है, वो उस सुसमाचार के विषय में बताता है जिसमें परमेश्वर की सामर्थ है जो मनुष्य को उद्धार पहुंचाती है। उसके बाद उस धार्मिकता के बारे में वो चर्चा करता है जो विश्वास करने से मिलती है। उसके बाद वो परमेश्वर की महिमा के बारे में बताता है जो सारी सृष्टि में प्रकट है। यह पहला अध्याय है, अब आप पढ़ते समय देखते हैं ये सारी बातें देखेंगे। दूसरा अध्याय है, वो बताता है कि यहूदी और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं है और कोई भी परमेश्वर के सामने कोई भी बगाना नहीं मार सकते कि सब के सब परमेश्वर की नजर में पापी है। दूसरा अध्याय में हमें ये भी सीखने को मिलता है कि परमेश्वर की करुणा जो है हमें मन फिरा की ओर ले जाती, परमेश्वर की कठोरता नहीं, परमेश्वर की करुणा हमें मन फिरा की ओर ले जाती है। दूसरा अध्याय में वो ये भी बताता है कि कतना से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अब चाहता है शरीर की नहीं मन की, हृदय की कतना। तीसरा अध्याय में वो कहता है कि यहूदी लोगों के पास एक एडवांटेज था, एक खास चीज उनके पास थी, परमेश्वर का वचन, लेकिन फिर भी उस नियम या व्यवस्था का पालन करने से वो परमेश्वर के सामने या नजर में धर्मी नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर की धार्मिकता उस व्यवस्था से हटकर मानव जाति पर प्रकट हुई है, जो कि विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर है, वो विश्वास जो यीशु मसीह पर किया जाता है वो धार्मिकता हमें मिलती है। और वो ये भी कहता है कि पुराने नियम में व्यवस्था ने भी और भविष्यवक्ताओं ने भी इस बात की गवाही दी है इस धार्मिकता के, और ये भी बताता है कि ये धार्मिकता जो है यानी धर्मी ठहराए जाना जो है सबके लिए, उन सबके लिए जो विश्वास करता है। और वो ये भी कहता है कि क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए कीमत चुकाई है, हर वो विश्वासी जो इस बात को ग्रहण करता है वो मुफ्त में बिना किसी कीमत चुकाए बिना किसी काम किए परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया जाता है उसके अनुग्रह के कारण। चौथा अध्याय वो अब्राहम के विषय में बताता है कि परमेश्वर ने उसको धर्मी घोषित किया इसलिए नहीं कि उसने व्यवस्था का पालन किया, क्योंकि अब्राहम के समय व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसलिए कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और जो बात परमेश्वर ने उसे कही थी उसे उसने स्वीकार किया, उसने विश्वास किया। और लिखा है उस चौथा अध्याय में, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो बात वो जो विश्वास उसने किया उसको परमेश्वर ने उसके लिए धार्मिकता गिना। यूनानी भाषा में लिखा है इट वाज क्रेडिटेड, उसके अकाउंट में उसके खाते में परमेश्वर ने उसके लिए क्रेडिट किया कि उसने मेरी उस बात पर विश्वास किया इसलिए वो धर्मी है, और इस कारण वो सभी विश्वास करने वालों का पिता बन गया। और ऐसा हमने विश्वास कैसे था, जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा था, जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा था उसने विश्वास किया। क्या उसने सब कुछ तुरंत विश्वास किया था? नहीं किया, उसको समय लगा। उसने परमेश्वर की उन बातों को खुद अपनी कोशिश से अपनी बुद्धि से पूरा करने की कोशिश की, आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब उसने ये निश्चय जान लिया कि जिसने वादा किया है वो उस वादे को पूरा करने में समर्थ है। अगर हमको समय लगा लेकिन उसने विश्वास किया। और ध्यान रखना कि जो बातें इब्राहिम से कही गई थी वो उसके लिए भविष्य की बातें थी, लेकिन जो बातें आज परमेश्वर हमसे कहता है वो भविष्य की नहीं। बाइबल में बहुत सारे बातें वर्तमान है, अभी की है, लेकिन अभी के लिए जो परमेश्वर हमसे कहता है और हम विश्वास करेंगे तो अभी भी और भविष्य में भी हमें उससे फायदा होगा, क्योंकि हमारे लिए जितनी भी बातें परमेश्वर कहता है उसमें जो कुछ परमेश्वर ने करना था उसने कर ला, हमें तुरंत उसे ग्रहण करना है। हो गया सारे अध्याय हो गया, नहीं अब तो सारे हो गए। पांचवा अध्याय में हमें वो बताता है कि उस विश्वास के कारण हम धर्मी कहलाएंगे, इसलिए परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, वी आर अ चीज। और ये भी कि उस अनुग्रह के द्वारा जो हम पर हुआ है, जो विश्वास से हम पर हुआ है, हमें परमेश्वर तक हमारी पहुंच, उसके सिंहासन तक हमारी पहुंच है। उसके बाद पांचवा अध्याय में वो ये भी बताता है कि पाप जिस संसार में एक मनुष्य के द्वारा आया, इसलिए एक ही मनुष्य के द्वारा पाप से छुटकारा भी आया, जिसको परमेश्वर अनुग्रह शब्द इस्तेमाल, जिसको समझाने के लिए परमेश्वर अनुग्रह शब्द इस्तेमाल करता है। यानी पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर पौलुस हमें यह समझाना चाहता है कि हमारे कामों के द्वारा, जो कि उस समय के लोगों के लिए व्यवस्था का पालन करना अभी है, हम मुक्ति नहीं पा सकते या हम उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि उद्धार के लिए परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने की जरूरत है और कोई भी मनुष्य वो कीमत चुका नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर ने उसको मुफ्त में दिया है। और उस मुफ्त में जो उद्धार मानव जाति को मिला है उसको कहता है अनुग्रह या अंग्रेजी में ग्रेस। छठा अध्याय में हमें इससे वो कहता है कि हर विश्वासी को उस नए जीवन की सी चाल करना चाहिए। में छठा अध्याय में वो ये भी बताता है कि हर विश्वासी को ये समझते हुए चलना चाहिए कि उसका पुराना मनुष्यत्व जो है क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्रूस पर चढ़ाया जाने का मतलब क्या है? डाई, मर गया है, पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व जो है खत्म हो गया है, वो मर चुका है। यानी अब हम पहले के समान नहीं सोचते, यानी हम अब यीशु मसीह के समान सोचना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें एक नया स्वभाव, एक नया नेचर मिला है। सातवां अध्याय में वो और भी उन बातों को जो पहले जिसकी चर्चा उसने की है और खुलासा करके समझाता है, उदाहरण देता है, खास करके उन लोगों से बात करता है जो पुराने नियम को जानते हैं, जो पुरानी व्यवस्था को जानते हैं, और पुरानी व्यवस्था को वो एक पति के साथ तुलना करके बताता है कि जब पति मर जाता है तो पत्नी किसी और व्यक्ति से शादी कर सकती है और वो उसके लिए गलत नहीं होगा, वो व्यभिचारिणी नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि उसका पति मर गया है। लेकिन पति के जीवित रहते हुए अगर वो दूसरा एक व्यक्ति से शादी करती है तो वो गलत होगा, वो पाप होगा। और फिर वो कहता है कि इसी समान व्यवस्था जो है हमारे लिए मर गई और अब हमारी शादी मानो एक और व्यक्ति के साथ हुई है जिसका नाम है परमेश्वर। यानी वो पुराने नियम जानने वालों से कहता है कि पुराना नियम खत्म हो गया है, अब पुराने नियम में अब वो व्यवस्था की जो बात वो करता है, उस व्यवस्था में तीन बातें पाई जाती है, परमेश्वर के मॉरल लॉस, यानी परमेश्वर के जो नैतिक गुण है उससे संबंध रखने वाले नियम, और बेली जो पाप से मुक्ति पाने के लिए हमेशा के लिए नहीं, टेम्पररी मुक्ति पाने के लिए जो हम जो लोग करते थे सैक्रिफाइसेस, और फिर परमेश्वर के नियम के अनुसार कुछ पर्व मनाए जाते थे। ये तीनों बातें हैं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा मानव जाति को या खास करके यहूदियों को ये पता चल जाता है कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड क्या है, मॉरल स्टैंडर्ड क्या है। परमेश्वर ने जो मानव जाति के लिए जो मानक या जो स्तर रखा है वो क्या है, लेकिन कोई भी इंसान उसको पूरा नहीं कर पाता, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, इसलिए वो समय समय पर बलिदान चढ़ाते थे ताकि थोड़े समय के लिए उनको उस पाप करने के बाद जो मन में जो सुगंध महसूस हम करते हैं, हमें पता लगता है कि हमने गलत किया, उस हम अपने आप को दोषी जो ठहराते हैं उससे हमें छुटकारा मिले थोड़े समय के, क्योंकि उसके बाद फिर हम पाप करते हैं, फिर दोबारा जीवन महसूस करते हैं, फिर उसके लिए हम बलि चढ़ाते हैं। ये हमारे पूर्वजों की बात बता रहा हूँ। और वो जो पर्व मनाते थे वो आने वाले समय के संकेत देते थे कि एक समय आएगा जब परमेश्वर हमेशा के लिए मानव जाति को पाप से छुटकारा देगा। इसलिए वो आशा बनी रहती थी एक दिन कोई आएगा, इसलिए उनको ये पर्व मनाना जरूरी था ताकि उनमें आशा बनी रहे और वो आगे भविष्य को ओर देखते रहे। हमने अभी बताया था ना कि अब्राहम के विषय में कि व्यवस्था के आने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को धर्मी ठहराया, यानी अब्राहम ने जो विश्वास किया वो उसके लिए धार्मिकता क्या गिना गया, क्योंकि परमेश्वर के सत्य को उसने स्वीकार किया। आज आप और मैं परमेश्वर के उस काम पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया। हमें व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है। आप व्यवस्था का मतलब सिर्फ पुराने नियम की वो बातें नहीं, कोई भी हमें ऐसा काम करने की जरूरत नहीं जिससे परमेश्वर हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारे लिए कुछ करे। हम अभी अगर कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हम पर प्रसन्न है। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो किया है वो सही माने देखा जाए तो अनुग्रह है, लेकिन हम उसको अनुग्रह के रूप में नहीं देखते क्योंकि हम सोचते हैं या हमें शिक्षा मिली है कि अनुग्रह जो है सिर्फ नया नियम में है, लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर का अनुग्रह रहा है। नूह के विषय में क्या लिखा है? नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, इब्राहिम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, लेकिन ये सब व्यवस्था आने से पहले की बात है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा है क्योंकि वचन संहिता में लिखा है कि वो अनुग्रहकारी कब से आदि से, वो अनुग्रहकारी दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला है। ये शुरू से यीशु मसीह जब आया, यानी परमेश्वर जब मनुष्य बन के आया, तो परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो मानव जो स्टैंडर्ड रखा था उसको पूरा किया, और हमने क्या किया? हमने उस पर विश्वास किया, यानी जो कुछ यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में किया वो सब कुछ पूरी मानव जाति के लिए है। इसलिए यीशु मसीह के उस काम पर विश्वास करने से हम भी धर्मी गिने जाते हैं, यानी परमेश्वर हमारे लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमने किया है, इसलिए हम कहते हैं कि वो भला है, वो करुणाकारी और दयालु है। हम नहीं कर सकते थे इसलिए यीशु मसीह आया, हमारे लिए किया और इतना आसान किया कि आज जो कोई उस बात को स्वीकार करते हैं उसके खाते में ये क्रेडिट में डाला जाता है कि इसने ये किया है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब क्या? तो नंबर वन, सबसे पहले आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये है कि हम पुराने सोच विचार में ना चले। यदि हम पुरानी बातों के अनुसार चल रहे हैं तो मान लीजिए कि हम आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चल रहे हैं, और यदि हम आत्मा के द्वारा नहीं चलाए चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। अब हमें थोड़ा सा और समय चाहिए समझने के लिए कि परमेश्वर का पुत्र और संतान में क्या फर्क है। तो फिलहाल हमें इन 1, 2, 3 से लेके 8वां अध्याय तक मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा दिखाया है, आप घर जाके इस हफ्ते में पढ़ने की कोशिश करेंगे, खुद अपना अध्ययन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई है वो सही है या नहीं। तो सही नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, जब भी मैं दोबारा आपसे मिलूंगा फिर हम चर्चा करेंगे। अगर आपने सही पाया तो अच्छी बात है, उसके अनुसार आप चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि हम अगर पुराने मनुष्यत्व या पुराना स्वभाव जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हमारे जीवन में था, यानी जो कुछ हम सोचते थे अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में और दूसरों के बारे में, उसके अनुसार यदि हम चलेंगे हम परमेश्वर के पुत्र नहीं होंगे, क्योंकि 6वें अध्याय में लिखा है कि अब हम नए जीवन की भी चाल चलेंगे, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव जो है मर गया है। और 6वें अध्याय में ये भी लिखा है कि, और 7वें अध्याय में भी ये लिखा है कि क्योंकि वो मर गया है उससे मरा हुआ समझना चाहिए। अब फर्क क्या है? अगर वो मर गया तो मर गया है, लेकिन क्या हम उसे मरा हुआ समझकर चलते हैं? अक्सर नहीं करते, इसलिए हमें यह बताने की जरूरत है कि जो पुराना स्वभाव हमारा मर गया है, खत्म हो गया है, उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ो। उसको फिर से मरने के बाद हम क्या करते हैं? गाड़ देते हैं या चला देते हैं। बड़ी के समय में लोग चलाते रहते, गाड़ देते, तो इसलिए हमसे कहा जा रहा है कि जो मुर्दा गाड़ा गया है उसे खोद कर दोबारा मत निकालो, उसको फिर से जीवित मत करो, उसको मरा हुआ समझ कर आगे बढ़ो। हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के पुत्र होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया, कड़ी मिनट सुनकर मुझे बता देना, यीशु मसीह जब इस संसार में आया, मनुष्य बन के आया और यीशु मसीह के बारे में कुछ बताया गया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, प्रिय जन नहीं, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। उसके बाद तुरंत उस सत्य के विषय में यीशु मसीह को किसी ने ललकारा, किसी ने चुनौती दी और फिर यीशु मसीह को उसका सामना करना पड़ा। इसका मतलब अभी हमने पुराना मनुष्यत्व के विषय में बताया और नया जीवन के विषय में बताया, आत्मा के द्वारा चलाए करने के बारे में बताया और पुराने विचार के अनुसार चलाए करने के बारे में बताया। जब हम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे विषय में परमेश्वर क्या कहता है वो जब हम पर प्रकट हो जाता है और जब हम उस पर विश्वास करने की शुरू करते हैं या कोशिश करते हैं, तुरंत हमें चुनौती दी जाएगी। अब सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या बताता है वो हमें समझ आए। हम बाइबल पढ़ते तो है, पढ़ते हैं ना सर, लेकिन क्या हमें मालूम है कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, सोचने की बात। लेकिन कभी कभी क्योंकि हम जानना चाहते हैं या परमेश्वर इतना करना दिखाता है हम पर, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, जिसको साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देता है। जब हमारी आंखें खुल जाती है तो पवित्र शास्त्र में से कुछ बातें हमें समझ आती है हमारे विषय में, और उसके बाद हम चाहेंगे कि जो हमें समझ आया उससे हम विश्वास करें ना, ऐसे ही करते ना। और जब हम विश्वास करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत कोई हमें ललकारता है, क्या वाकई में ऐसा है? और फिर इसके बाद क्या होता है आप जानते हैं, हम ज्यादातर उसी की बातों में आ जाते हैं। इसलिए ध्यान देखिए, जब भी आप परमेश्वर के वचन से, पवित्र शास्त्र में से अपने बारे में कुछ समझेंगे, जब भी आपको कुछ बात समझ आती है तुरंत आपकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जितना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हमने क्या देखा, यीशु मसीह के लिए बताया गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, तुरंत उसको परीक्षा हुई, क्या अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब हमारे जीवन में भी ऐसा होगा। इसका मतलब आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये है कि पवित्र शास्त्र में जो बातें हमारे विषय में लिखी है, जब हमें वो समझ आती है उसको स्वीकार करना, उसको ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। मैं फिर एक बार बताऊं, यह आपको समझ आया, आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये है कि पवित्र शास्त्र हमारे विषय में जो कुछ भी कहता है उसे समझना, उससे ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब ये है कि उसके अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा से सुनना कि मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए या कौन सा शर्ट किस संडे को पहनना चाहिए, परमेश्वर बताओ, वो नहीं है आत्मा के द्वारा चलाए चलना। या हमने दो मकान पसंद किए, इनमें से कौन सा चुनो, जल्दी से पवित्र आत्मा से पूछ लेना, बताओ इधर वाला लू या उधर वाला लू। आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये नहीं है, वो आत्मिक वरदानों में चलना है। आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये है कि जो बातें पवित्र आत्मा हमें पवित्र शास्त्र में से समझाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का लिखने वाला कौन है, पवित्र आत्मा, और वो जब किसी भी बात पर प्रकाश डालता है हमारे लिए ताकि हमें समझ आए, और जब हम उन्हें समझाता है उसे स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना और उसके बाद उसके अनुसार चलना। अब मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि हमें पवित्र आत्मा से सुनना चाहिए हमारे जीवन की हर बात को लेकर, मैं सिखाता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब वो नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें, वो भी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलने का सबसे पहला कदम जो है, द फर्स्ट स्टेप या द प्राइमरी एक्ट, सबसे प्रथम बात जो है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना, वो ये है कि आपके विषय में पवित्र शास्त्र क्या कहता है उसको स्वीकार करना, उसको मानना या विश्वास करना और उसके अनुसार चलना। अभी तक हमने इतना अध्ययन किया है कि आत्मा के द्वारा चलाए चलने का मतलब ये है कि हम पुराने स्वभाव या पुराने मनुष्य के अनुसार नहीं चलना करेंगे, और आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये है कि पवित्र शास्त्र यानी बाइबल हमारे विषय में जो कुछ भी कहता है या बाइबल की जो बातें हमें समझ आती है अपने विषय में
क्योंकि सबसे पहले अपने विषय जो समझ आती है उसको मानना, उससे ग्रहण करना या उसको विश्वास करना, जो भी जैसे भी आप उसको कहना चाहे, और उसके अनुसार चलना, और तब हम परमेश्वर के पुत्र की श्रेणी में आएंगे।